तो प्रथमांतार्थ को मुख्य विशेष मानने में दो दोष दिए थे। एक तो भाष्य सिद्ध जो एक वाक्यता है वह एक वाक्यता नहीं हो पाएगी, और दूसरा दोष दिया कि पश्य मृगो धावति, ये मृग जो प्रथमांत वाला प्रयोग किया जाता है वह प्रयोग नहीं होकर के द्वितीयांत वाला प्रयोग होने लगेगा। इस तरह से दो दोष बताए थे। और मैंने ये कहा था कि भाष्य सिद्ध एक वाक्यता वाली बात मैं आगे के पाठ में बताऊंगा, तो आज वह प्रसंग आ रहा है। अब ये जब दोष दिया न्यायिकों को कि पश्य मृगो धावति, इस तरह से प्रथमांत वाला वाक्य जो है वह असंभव हो जाएगा, उस पर न्यायिक भी कम थोड़े हैं, वो भी अपने तर्क के द्वारा जो है यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं जी, प्रथमांत वाला भी जो है ना वाक्य वह बनेगा। तो कैसे तर्क दे रहे हैं उसको सुनना है, देखना है। कहते हैं कि न च पश्य इत्यत्र तम इति कर्म अध्याहार्यम, कहा कि ऐसा है कि हम इस तरह से वाक्य का प्रयोग करेंगे, क्या कि मृगो धावति, ठीक है, और फिर एक तम पद का अध्याहार कर लेंगे। अध्याहार करना कहते हैं कि जो पद वाक्य में न हो लेकिन अर्थ के आधार पर उस पद की जरूरत समझी जाए, तो उस पद को जो है ना मानसिक रूप से कल्पना कर लेते हैं, उसी का नाम है अध्याहार। तो कहा कि मृगो धावती है, उसके बाद हम तम पद का अध्याहार करेंगे और फिर उसके बाद पश्य को रखेंगे। अब वाक्य क्या बन गया कि मृगो धावती तम पश्य, माने मृग दौड़ रहा है, तम माने उसको देखो। तो इस तरह से कर्मत्व किसमें आया, तम में, द्वितीया किसमें आई, तम में, मृग बेचारा बच गया, मृग में जो है द्वितीयापत्ति नहीं हुई, कर्मत्वापत्ति नहीं हुई। तो इस तरह से प्रथमांत प्रयोग जो है आपने जो कहा था कि ये असंभव है, उसको न्यायिकों ने संभव बना करके दिखा दिया कि क्या किया, कैसे संभव बनाया, तो तम पद का अध्याहार कर लिया, तो और ऐसा कर लिया कि पश्य मृग अति मृगो धावते तम पश्य, ताकि इस तरह से तम का तम कर्म का अध्याहार करके हम प्रथमांत वाला वाक्य भी संभव बना लेंगे। इस तरह से इन्होंने प्रथमांत वाला वाक्य सिद्ध कर दिया न्यायिकों ने। इस अब जो है व्याकरण कहते कि अच्छा, अगर ऐसा आप करेंगे कि मृगो धावते तम पश्य, तो फिर वाक्य भेद प्रसंगात, फिर यह वाक्य भेद हो जाएगा, माने अलग अलग वाक्य दोनों बन जाएंगे, एक वाक्य नहीं रह पाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था, पश्य मृगो धावती में यह एक ही वाक्य हो रहा था, अब यह दो वाक्य बन गया। पहला वाक्य बना मृगो धावती और दूसरा वाक्य बन गया तम पश्य। तो ये वाक्य भेद होने लगेगा, एक वाक्य तो नहीं हो पाया ना, जबकि भाष्यकार ने इसको एक वाक्य माना हुआ है, कहा कि मृगो धावती पश्य या पश्य मृगो धावती, यह जो है यह एक वाक्य है। तो यही बात वहाँ पहले पहला जो दोष दिया था ना शुरू शुरू में, उसकी व्याख्या यहाँ पर है। शुरू शुरू में कहा था ना कि यदि प्रथमांतार्थ प्रधान होगा तो पश्य मृगो धावती को जो भाष्यकार ने एक वाक्य माना है, वहाँ पर एक वाक्यता सिद्ध की है, वह एक वाक्यता सिद्ध नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी, तो वो बात यहाँ पर आई है कि न्यायिकों ने क्या किया कि प्रथमांत प्रयोग हो, पश्य मृगो धावत इस तरह का प्रयोग हो, इसके लिए इन्होंने तम रूपी कर्म का अध्याहार किया और कहा कि पश्य मृगो धावती तम पश्य, इस तरह से वाक्य बनाने पर प्रथमांत प्रयोग भी सिद्ध हो पाएगा। तो ऐसा जो इन्होंने न्यायिकों ने किया, इस पर बात आ रही है कि फिर भाष्य सिद्ध जो एक वाक्यता है वो नहीं हो पाएगी, या एक वाक्य नहीं होकर के दो वाक्य बन गया अगर हम तम का अध्याहार करते हैं। तो इस तरह से अब यह कम्प्लीट हुआ पहले दोष वाली बात को कि क्यों नहीं भाष्य सिद्ध एक वाक्यता सिद्ध हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने तम का अध्याहार किया है तो वह दोनों अलग अलग वाक्य बन रहे हैं, एक वाक्य नहीं बन रहे हैं। तो ये दो दोष हो गए। अब तीसरा दोष भी बताया जा रहा है, कहा कि आप जब कहेंगे ना कि मृगो धावती तम पश्या, तो तम का आपके मत में क्या अर्थ होगा, तो कहा कि तम का अर्थ होगा मृगम, माने मृग को देखो। कहा कि यही गलत हैं आप, हम मृग को भैया नहीं दिखाना चाहते हैं, हम किसको दिखाना चाहते हैं, उसका जो उत्कट धावन है, माने अत्यंत वेग से जो हिरण दौड़ रहा है उस दौड़ने में जो उत्कट वेग है, अत्यंत वेग है, हम उस अत्यंत वेग को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखने वाला जो है वो तो हिरण को हजारों बार देख चुका है, लेकिन उतना तेजी से दौड़ते हुए हिरण को कभी नहीं देखा है, तो उसके लिए ये बात आती है कि पश्य मृगो धावति। तो यहाँ पर दर्शन क्रिया का कर्म यानी किसको देखो, यह जो प्रश्न है इसका जो उत्तर होगा वही होगा दर्शन क्रिया का कर्म। तो दर्शन क्रिया का जो कर्म है वह यहाँ पर वास्तविक में क्या है, उत्कट धावन क्रिया जो है वही है दर्शन क्रिया का कर्म। तो हमारे मत में हम जब व्यापार को मुख्य मानेंगे तो मृगो धावति में क्या होगा, धावन व्यापार मुख्य होगा। तो जब देखा जाएगा तो धावन व्यापार को ही देखा जाएगा, धाव उत्कट धावन जो है अत्यंत तेजी से जो धावन है उसको देखा जाएगा। लेकिन आप तम के द्वारा किसको दिखा रहे हैं, मृगम पश्य तम पश्य, माने मृगम पश्य, आप मृग को दिखा रहे हैं, तो ये बात ही उल्टी हो गई ना। पश्य मृगो धावति इस वाक्य के प्रयोग का जो प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन ये है कि उत्कट धावन क्रिया को दिखाना है, उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके अनुसार हिरण को वो देखेगा, जबकि देखना किसको है, उत्कट धावन क्रिया को देखना है। तो ये तीसरा दोष हुआ। वही पंक्ति में देखिए, किताब में कहता है कि उत्कट धावन क्रिया विषयस्यैव दर्शन कर्मतया, उत्कट धावन क्रिया जो है वही यहाँ पर वास्तविक में दर्शन क्रिया का कर्म है, माने उसी को दिखाना है। और ऐसा इस तरह का अन्वय ही जो है प्रतिपिपादयिषित है, माने धावत क्रिया विशेषण है और ये दर्शन क्रिया जो है वह विशेष्य है, इस तरह से अन्वय का प्रतिपादन करना यहाँ पर वक्ता को अभिप्रेत है। वक्ता इस तरह से बताना चाहता है कि उत्कट धावन क्रिया को देखना, वह बात भी जो है सिद्ध नहीं हो पाएगी आपके मत में, क्योंकि आपने जो तम का अध्याय करके कहा कि तम पश्य, तो तम का अर्थ मृगम पश्य हो रहा है, उसका अर्थ उत्कट धावन क्रिया तो संभव नहीं है, क्योंकि आपने उसको प्रधान माना ही नहीं है, आपने तो मृग को प्रधान मान लिया है। ठीक। और चौथा दोष देते हैं कि अध्याहारे अनन्वयापत्तेश्च, कहा कि अगर आप तम पद का अध्याहार करके प्रथमांत वाक्य सिद्ध कर रहे हैं पश्य मृगो धावति को, तो उसमें अनन्वय की आपत्ति होगी, माने तम पदार्थ का अन्वय जो है कहाँ करें कहाँ नहीं करें, इस तरह का जो है प्रश्न का समाधान जो है वह संभव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से चार कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि दोष बताए गए, अगर हम प्रथमांतार्थ को मुख्य मानते हैं तो पहला दोष ये हुआ कि पश्य मृगो धावति यह जो प्रथमांत प्रयोग होता है मृगह वाला प्रयोग ये नहीं हो पाएगा, तो क्या होने लगेगा, पश्य मृगम धावति होने लगेगा। इस पर यदि नैयायी कहते हैं कि पश्य मृगम धावति की वजह धावंतम मृगम पश्य होने लगेगा, तो व्याकरण ने कहा कि तो भी चलेगा, लेकिन मृगम मृगह नहीं होकर के मृगम हो जाएगा। तो पहला दोष ये हुआ। दूसरा दोष हुआ कि भाष्यकार ने पश्य मृगो धावति को एक वाक्य माना है, जबकि नैयायी के मत में क्या हो रहा है कि वो तम का अध्याहार कर इसको बनाते हैं कि मृगो धावति तम पश्य, इस तरह से उनके मत में दो वाक्य बन रहे हैं, भिन्न वाक्य बन रहे हैं, तो भाष्य सिद्ध एक वाक्य नहीं हो पाएगा, ये दूसरा दोष हुआ। तीसरा दोष हुआ कि आप जो पश्य कहते हैं देखने के लिए कहते हैं, वो किसको, मृग को देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि आप के मत में मृग जो प्रथमांतार्थ है वही प्रधान है, तो जबकि वह उद्देश्य नहीं है वक्ता का, वक्ता का उद्देश्य है कि उत्कट धावन क्रिया को दिखाना है, जो कि आपके मत में संभव नहीं है, वो हमारे मत में संभव है, क्योंकि हमारे मत में धावत क्रिया जो है वो पश्य क्रिया का विशेषण बनता है। तो जब भी कहेंगे कि देखो तो किसको देखो, तो धावती को देखो, धावती क्या है, उत्कट धावती है, उत्कट धावन क्रिया है, तो उसको देखो, इस तरह से जिसको वक्ता दिखाना चाहता है उसको वह दिखा नहीं पाएगा, ये तीसरा दोष हुआ। और चौथा दोष हुआ कि अध्याहार अगर हम करते हैं तम का, तो उसमें अनन्वय की आपत्ति आएगी, माने उसका अन्वय जो है अगर आप करना भी चाहें कि हम धावती में अन्वय करके धावत क्रिया दिखा लेंगे, तो इस तरह से उसका अन्वय नहीं हो पाएगा। इस तरह से इन्होंने चार दोष बताए। अब जो है पश्चिम मृगो धावती वाला जो दोष है, इसके कारण से ही व्याकरण न्यायिकों के मत का खंडन करते हैं, और इस कारण से ही प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध जो है वह स्वीकार नहीं किया जाता। तो अब न्यायिक के मत में यहाँ पर कैसा कार्य कारण भाव है, तो कहते हैं कि एवं च भावना प्रकारक बोधे प्रथमांत पद जन्योपस्थिति कारणम। वो जो है न्यायिक, वो भावना प्रकारक बोध में, भावना माने व्यापार, प्रकार माने विशेषण, और बोध माने शाब्द बोध, माने ऐसा शाब्द बोध जिसमें भावना प्रकार हो, माने व्यापार विशेषण हो, और प्रथमांतार्थ जो है वह विशेष्य हो, ऐसा जहाँ शाब्द बोध होगा वहाँ पर प्रथमांत पद जन्य उपस्थिति कारण है, माने प्रथमांत पद से होने वाला बोध कारण है। इस तरह से जो न्यायिक लोग कहते थे कार्य कारण भाव, वह न आदरणीयम, वह आदरणीय नहीं है, वह आदर के योग्य नहीं है। तो क्या है, तो किंतु आख्यातार्थ कर्तृ प्रकारक बोधे धातुजन्य उपस्थिति भावनात्वावच्छिन्न विषयतया कारणम इति कार्य कारण भावो द्रष्टव्यः। तो कैसा कार्य कारण भाव ये व्याकरणों के मत से है कि आख्यातार्थ कर्ता, आख्यात माने तिंग, आख्यातार्थ माने तिंगर्थ, आख्यातार्थ कर्ता अगर प्रकार है, विशेषण है, जिस बोध में माने जिस शाब्द बोध में, उसमें धातुजन्य जो भावना की उपस्थिति होती है, माने धातु से जो भावना का बोध होता है, व्यापार का बोध होता है, वह बोध होना ही जो है कारण होता है। तो आख्या ऐसा शाब्द बोध जिसमें आख्यातार्थ कर्ता विशेषण हो और व्यापार जो है विशेष्य हो, ऐसे शाब्द बोध, ऐसा शाब्द बोध कब होता है, जब धातु से व्यापार अर्थ की उपस्थिति होती है। इस तरह से कार्य कारण भाव जो है व्याकरणों के मत में सिद्ध होता है। अब यहाँ पर इसी बात को भावनात्वावच्छिन्न विषयतया इन्होंने लिख दिया, थोड़ा सा उसको जो है ना लंबा बना दिया, लेकिन बात वही, धातुजन्य भावनोपस्थिति कारणम, इसका जो अर्थ है वही अर्थ है, धातुजन्य उपस्थिति भावनात्वावच्छिन्नतया, भावनात्वावच्छिन्न विषयतया। तो इसलिए इसे घबराना नहीं है, आप इसको शॉर्टकट में ये कह लीजिए, मान लीजिए और समझ लीजिए कि धातुजन्य भावनोपस्थिति कारणम इति कार्य कारण भावो द्रष्टव्य। आगे लिखते हैं कि भावना प्रकारक बोधम प्रतीतो। अच्छा, अब एक चीज जो है ना, नई बात ये आ रही है कि भाषा जो है वह तो बहुत प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, बहुत अनंत भाषा है, अनंत टाइप के वाक्य बनते हैं, जितने वक्ता हैं उतने प्रकार से जो है वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो उसमें कहीं कहीं क्या होता है कि व्यापार ही विशेष्य होता है और व्यापार ही विशेषण होता है, ऐसा भी देखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, पश्चिम मृगो धावती आपने कहा था ना, तो वहाँ पर दर्शन व्यापार और धावन व्यापार दो व्यापार है, तो दर्शन व्यापार विशेष्य बनता था और धावन व्यापार जो है व्याकरण के मत में विशेषण बनता था। तो देखा ना आपने, यहाँ पर व्यापार ही प्रकार बन गया, विशेषण बन गया। और भी प्रयोग होता है, जैसे पचति भवति, पाक हो रहा है, इस अर्थ को कहने के लिए कोई वक्ता पचति भी कहता है और कोई पचति भवति भी कहता है। तो अगर पचति भवति कहा जाता है तो यहाँ भी दो व्यापार हुआ, एक हुआ पाक व्यापार, एक हुआ भवन व्यापार। तो यहाँ भवन व्यापार विशेष है और पाक व्यापार जो है विशेषण है। तो इस तरह से आपने क्या नया सुना, नया ये सुना कि कुछ वाक्यों में व्यापार विशेषण भी होता है और व्यापार विशेष भी होता है, लेकिन अधिकतर वाक्यों में व्यापार हमेशा विशेष ही होता है। ठीक है, तो जहाँ पर व्यापार विशेषण भी होता है और व्यापार विशेष भी होता है, वहाँ के लिए कार्य कारण भाव क्या बनेगा, तो उसके लिए कहते हैं कि भावना प्रकारक बोधम प्रति, माने भावना अगर प्रकार होगा, ऐसा जो बोध है, शाब्द बोध है, उसके प्रति कृतजन्य उपस्थिति वत, जैसे कृदंत स्थल में, सुबंत स्थल में कृतजन्य उपस्थिति कारण होता है, माने कृत प्रत्यय से होने वाला बोध कारण होता है, उसी तरह से वहाँ पर धातु से होने वाला जो बोध है, मतलब भावना का बोध है, व्यापार का बोध है, वह कारण हुआ करता है। पश्य मृगो धावति पचति भवति इत्यादि अनुरोधात, माने इन दोनों वाक्यों को देख करके और इस तरह के अन्य वाक्यों को देख करके यह कार्य कारण भाव माना जाता है। तो दो तरह का कार्य कारण भाव हो गया, एक तो हुआ कि जहाँ पर व्यापार केवल विशेष्य रूप में है उसके लिए कार्य कारण भाव हुआ कि आख्यातार्थ कर्तृक प्रकारक बोधे धातु जन्योपस्थित भावनात्वावच्छिन्न विषयतया कारणम, और जहाँ पर व्यापार ही विशेषण है, व्यापार ही विशेष है, ऐसे स्थल के लिए, ऐसे वाक्यों के लिए कार्य कारण भाव हुआ कि भावना प्रकारक बोधम प्रति धातुर्थ भावनोपस्थिति हेतु, भावना प्रकारक बोधम प्रति धातुर्थ भावनोपस्थिति हेतु, ये जो है कार्य कारण भाव हुआ। तो मुख्य विशेष के संबंध में जो कार्य कारण भाव होता है वह व्याकरणों के मत में दो प्रकार का होता है। तो आज के पाठ में हमने मुख्य विशेष के कार्य कारण भाव को समझा और न्यायिकों के पक्ष का खंडन किया, उनका जो मान्यता था कि प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है, उस बात को हमने खंडित कर दिया। ठीक है, आज का पाठ यहीं रखते हैं।